Shanti. Good morning. आज बाबा ने विशेष जिन्होंने भारत को वैशाली बनाया है उन्हों को याद किया है. कईयों को ये मुरली याद होंगी, कोई कोई ऐसी मुरली है जो भूलती नहीं है. तो बाबा ने जब वैश्याओं की सेवा के लिए खास कहा तो समय एक भाई था, बीके भाई, तो उन्होंने ये पान का बीड़ा उठाया और एक संगठित रूप में उन्होंने कोशिश की ऐसे आत्माओं की सेवा करने के लिए. परंतु पहले तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा धंधा है, हमारी आजीविका कैसे होंगी. तो उन्होंने बाबा से पूछा, भाई ने, कि क्या हम उन्हों को सिलाई की मशीन लेकर के देवे ताकि फिर उन्हों का कुछ रास्ता हो आगे की आजीविका का. तो बाबा ने उसके लिए भी छुट्टी दे दी, परंतु फिर और भी कई बातें निकली. संस्कारों की बात आती है मुख्य, परंतु समाज में किस तरह से उन्हों को फिर से इंटीग्रेट करें ये भी बातें थी. तो वो जो बाबा चाहते थे वो हो नहीं पाया, परंतु जरूर बाबा ने जो कुछ कहा है वो होना है अवश्य. तो अभी भी हो सकता कि कहां पर भी ये सेवाएं शुरू हो जाए. कुछ वर्ष पहले जब अभी तक बाबा की पधरामनी होती थी तो विदेश में एक देश है जिसकी बहन ने मुझे खास बोला कि एक बहन इसी तरह से हमारे पास आने लगी है और एक वर्ष से चल रही है, उसको बाबा के पास ले आने की छुट्टी है. तो दादी से पूछा तो दादी ने कहा हाँ, जबकि एक साल का उसका नियम चला है, जरूर वो आए. तो छुट्टी भी मिल गई, परंतु फिर बीच में उसका मन ही बदल गया और फिर नहीं पहुंच पाए. तो संस्कार ऐसे कट्टर होते हैं जो बिल्कुल बंधन बन जाता. तो एक तो उन्हों को बाबा ने याद किया है और दूसरा बाबा ने वानप्रस्थियों को याद किया है कि वो नियम होता था कि एज आने पर वो वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के हरिद्वार में काशी में रहते थे तपस्या करने, भगवान की याद में बैठने के लिए. तो बाबा कहते कि आजकल तो कोई 80 वर्ष का भी हो जाता है, 90 वर्ष का भी हो जाता, उसको ये संकट नहीं आता कि मुझे कुछ अपना आगे के लिए कुछ पुरुषार्थ इस तरह से करना है. एनीवे वो भगवान को जानते भी नहीं, परंतु वो जो खोज थी, वो साइलेंस का अभ्यास था, आवाज से परे जाने का, वो भी नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि अभी तक मोह की रग टूटी नहीं है. जहां मोह की रग खींच लेती तो आत्मा वानप्रस्थ कैसे जाएंगे. और फिर तीसरी बात, स्टडी. बाबा ने आज मुरली कब न मिस हो उस पर खास अटेंशन दिलाया है, परंतु उसमें भी एक विशेष बात के कारण कई घर में बैठ जाते हैं और वो है संस्कार न मिलने कारण किसी के साथ रूठ पड़ते. वैसे तो बाबा ने कई बार ये बात बताई है कि मनुष्य के साथ आपका कुछ भी हो, शिव बाबा के साथ तो कुछ नहीं है. शिव बाबा तो कल्याणकारी है, तो बाबा की मुरली क्यों मिस की जाए. तो आज बाबा ने उन आत्माओं को भी याद किया है. ये है 5 तारीख की अगस्त मास की मुरली. मीठी बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने. तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना. प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते, सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। सुने, ध्यान से बुद्धि में रजिस्टर हो, फिर उसका प्रैक्टिस हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों में ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। तो याद नहीं करेंगे तो उसका कनेक्शन, जो खुशी में भी हो, खुशी में ही उसका एक मुख्य कारण बाबा की याद मिस। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं, भूल जाने के कारण तो नेक्स्ट क्या होता, खुशी तो तुरंत गुम हो जाती, परंतु दूसरी भी बात, फिर कोई सर्विस नहीं कर सकती। रात को बाबा ने समझाया है, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। शावकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते हैं पढ़े लिखे हैं वो प्रबंध करेंगे उनको ज्ञान देने का। तो बेचारे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि वह भी अबलाए हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। भगवान के ये महावाक्य बच्चों के प्रति औरों को समझाने के लिए अपना मंथन करके कुछ और भाषा यूज करनी होती। बोलो, तुम ही ऊंच ते ऊंच नीच ते नीच बने हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकते हो ये पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से मैं बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते, ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, गरीब से गरीब कितना भी हो उनों का है भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है उनों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूट भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूट कर बैठ जाते हैं। फलाने ने ये कहा, ऐसे कहा, इसीलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल से आती हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसी बहुत है कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उसमें उद्देश्य आदि कुछ भी नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। शव का लोग जब देखेंगे यहां ऐसे ऐसे आते हैं फिर दूसरी प्रॉब्लम आती तो उनके आने की देर नहीं होंगी। देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएंगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो। बाबा उसका भी फिर राय देती कि क्या किया जाए। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वा अर्थ। ये तो है 21 जन्मों के लिए कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती है कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले। उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग कहां कहां पुरुषों ने भी खोला होगा। प्रभुजी से बाबा कहते अक्सर करके माताएं ही कहती है कि उनके मन में भावना रहती। और पुरुष लोगों के लिए जो बाबा कहते आज तक भी वही बात देखते। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। सवेरे का समय देखो तो यहाँ पर भाई लोग जहां जहां चाय बनाने वाले हैं वहां पर संगठित रूप में बैठे हैं। शाम का समय देखो भाई लोग बैठे हैं। बहनें क्या कर रही होंगी, घर का काम कुछ न कुछ कर रही होंगी। तो बाबा कहती है कि संसार की ऐसी हालत हो गई है, वो घूमेंगे वो माताएं घर पे होंगी। शाहकारों के लिए तो यहां ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। वहां तो न सिर्फ मनुष्यों की ब्यूटी, उस बाबा ने गायों को भी याद किया। गायें भी कितनी सुंदर होंगी और फिर प्रकृति भी, प्रकृति में पशु पंछी सब कितने सुंदर होंगे। तो सबकी नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहां तुमको सच सुनाया जाता है। तो उस कारण से क्या है रिजल्ट, भक्ति में तो कहानियां सुनाएंगे परंतु बाबा के पास तो सच सुनाया जाता है। तो उस कारण से तो देखो कितने थोड़े आते हैं सच सुनने के लिए और सच को पालन करने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु बाहर के हिसाब से भक्तों के हिसाब से तो बहुत फर्क। तो एक तो बहुत थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं। वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं, दूसरी तरफ भक्ति के तरफ सत्संग के तरफ। परंतु वहां पर भी चाहे चर्च हो संडे के दिन सबसे अपना बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे और भारत में भी बाबा कहते हैं कि मंदिर में जाएंगे क्योंकि संगठन के बीच में होंगे तो बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे, श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चित्ता पर चढ़ने से बच जाए। शुक्ला दीदी अपनी कहानी सुनाती, बहुत बंधन था तो फिर बाबा ने ही उनका प्रबंध किया। और फिर एक और आत्मा याद आए, चंद्रू भाई जो सेंट थॉमस वर्जिन आइलैंड्स में थे, रोजी बहन का भाई, तो उसको भी बाबा ने, चंद्रू भाई की भी सगाई इसी तरह से कराई, क्योंकि वो जो बहन थी उसको भी पेरेंट्स हैरान कर रहे थे। तो कुछ समय तक ऐसे बाबा ने सेवाएं की, फिर देखा कि 10% बच जाती है, बाकी तो फेल हो जाते, तो फिर बाबा ने ये भी रस्म बंद कर दी। ज्ञान चित्ता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। न शादी करने से कुल का नाम बदनाम, और शादी करा लिया तो समझते हैं बस लोभ लालच के कारण सब कुछ ठीक है, परंतु फिर भी ऐसी तो कोई बात आजकल है ही नहीं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है। उस समय परिवार भी सब नजदीक नजदीक रहते थे, तो एक परिवार में कुछ भी होता तो सारे बरादरी में वो बात फैल जाती थी। आजकल तो कोई कहां पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई, मेरा के भी गीत है, फीमेल्स में नंबर 1 भगत भगतिन मेरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं तो बोलो, क्या उसको बोलना चाहिए? आजकल तो ऐसे मस्ती वाले कम ही आते, परंतु उन दिनों में कोई कोई को ऐसी तुरंत ही ज्ञान की मस्ती लगती थी, तो उनका संकल्प ऐसे चलता था, तो बाबा सिखाती है उनको क्या बोले। अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, ये तो विकारी पतित दुनिया है, बाप आए हैं इनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहां बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं, ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेंगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना बहुत सहज है। कितना टाइम लगता है ब्राह्मणी बनने में? बाबा कहते 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। विदेश में ऐसे हैं एग्जाम्पल्स, 2 सप्ताह के बाद टीचर बनकर औरों को कोर्स कराते रहे, टीचर्स वैसे भी कम थी, तो नए नए जिन्हों का लगता था कि हाँ ये निश्चय बुद्धि है, उनको जल्दी में ही टीचर बनने का चांस मिल जाता था। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, ये किसी बाहर वालों को समझाने के लिए। अब नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मुंह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, तो जो हर बात की रीत रस्म द्वापर में भी रही, सत्युग में जाएंगे वानप्रस्थ में? कौन समझता है कि सत्युग में वानप्रस्थ में जाएंगे? नो वन। अच्छा, सब मानते हैं कि सत्युग में वानप्रस्थ की कोई रस्म नहीं होंगी, राइट? तो बाबा भी उस बात को स्वीकार करते, परंतु बाबा दूसरी भी बात बताते, आजकल क्यों नहीं वो संकल्प आता, तमो प्रधान है ना, तो यहां ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। 80-90 वर्ष के जो हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें, ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। एक जन्म के लिए भी कोई पूज्य बन जाए वो तो अपने को बहुत भाग्यवान समझते, परंतु बाबा तो हमें आधा कल्प के लिए पूज्य बनाते और साथ साथ बिल्कुल हर प्रकार से संपन्न स्थिति में रखते। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ऐसे स्थिति आपकी हो जो आधा कल्प के लिए आपने जमा किया हो तो आपको वो अनुभव होगा। तो बाबा पूछती हैं, अपना हिसाब देखा है कहां तक हम वाणी से पड़े रहते, कहां तक के बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुनते और औरों को सुनाते? बाबा ने समझाया है, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं, बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्वसेवक लाडले बच्चों को तो बाबा कैसे ले जाएंगे घर? बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है, जो बाबा के सर्विस एवं बच्चे लाडले बच्चे हैं उनको तो नैनों पर बिठाकर ले जाते, आत्मा इतनी छोटी तो बाबा अपने नैनों पर बिठाकर उड़ा के ले जाते। तो अधर्मों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़ने के लिए, यहां तो कोई गरीब कई गरीब साधारण है, उन्हों को बाप पैर इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी कोई रॉयल चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते। यहाँ तो बाप गरीब नवाज है, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं, एक दो रुपया का भी मनी ऑर्डर भेज देते। इतने माँ बाप के बच्चे बिल्कुल इनोसेंट, जो एक रुपया दो रुपया का मनी ऑर्डर बाबा को उन दिनों में भेज देते। और बाबा क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? बाप कहते हैं, तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी हो, ड्रामा देखते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहां लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। एक तरफ बाबा खुली दिल से कहते हैं, जो भी भंडारे से चाय ले लो, फिर हिसाब भी बताते हैं, यहां जितना लिया वहां उतना कट। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सर्विस में बहुत फुर्त बच्चे चाहिए। बाबा ने किसके नाम लिए होंगे? बहुत फुर्त, बहुत सर्विसेबल बच्चे, सुदेश जैसे, मोहिनी जैसे, जिनको सर्विस का उमंग हो। दोनों आज मधुबन की सेवा में हाजिर है। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं, यहां बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं, प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर्स तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को भी मिलता ही नहीं। हम कितने भाग्यवान भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। एक तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई सुनते, परंतु ये भी मालूम है कि कलप कलप ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा ऐसे ही भाग्य होगा, और बाकी जनों का नहीं है वो कहेंगे ड्रामा। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं। सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक ये ज्ञान किसी को फिर मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बस ये अंदर रटते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चाट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूं। अब आप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी, बाप को याद करने से आधा कलप के पाप बसों हो जाएंगे। कितनी सहज युक्ति बतलाती है, एक तरफ प्राप्ति और दूसरी तरफ स्वच्छता सफाई। सब बच्चे सुन रहे हैं, ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूं, बाबा मुझे सिखलाते, तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। है बहुत सहज, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा शिव बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करते रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। और बहुत हिम्मत दिलाते हैं, नए नए बच्चे, परंतु फिर पुराने पुराणों को भी याद किया। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लेते बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से लूटना नहीं है। दूसरा, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी की दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधर्मों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। और आज का वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देंगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेंगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। जो भी चाहते हैं सेवा के लिए होना चाहिए, वो बाबा गारंटी देते हैं, बस याद में रहो तो वो भी हो जाएगा। ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देंगी, ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देंगी। स्लोगन, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अभी समय सफल किया, उपचारित अच्छा किया, सेवाएं अच्छी चली, तो फिर बस सब बातों से पार। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। किसको यह अनुभव है कि जब बाबा प्यार के सागर में लीन होकर के रहते हैं, थोड़े समय के लिए भी बेशक, परंतु उस दिन कोई बातें मुश्किल नहीं लगती। किसी की भी बात आए, सेवा की हो, संस्कारों की हो, सब बातें सहज लगती। किसको यह अनुभव है? मुझे लगता है कि थोड़ों ने हाथ उठाया है, परंतु हर एक को ये अनुभव अवश्य होगा। आप थोड़ा लज्जा कर रहे हैं हाथ उठाने में, परंतु यहाँ तक आप पहुंचे हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, तो जरूर वो अनुभव है, तभी ये बात का बाबा वर्णन कर रहे हैं। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। कौन सा बड़ा पत्र? मुरली। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं, तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न करे कर सके। ये बेहद की प्राप्तियों में मग्न रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। मुश्किल? बाबा कहते बहुत सहज, बस उस निश्चय से, उस विश्वास से करते चलो, देखते चलो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि सबके ध्यान पर तो वैसे भी बात है, परंतु मुरली के अंदर अंडरलाइन है तो मैं बताती। विशेष सूचना, बाबा के श्रीमत अनुसार मुरली केवल बाबा के बच्चों के लिए है, उनकी आत्माओं के लिए जिन्हें राजयोग का कोर्स भी नहीं किया है। इसीलिए सभी निमित टीचर्स एवं भाई बहनों से निम्न निवेदन है कि साकार मुरली की ऑडियो या वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या भी कोई और व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट न करें। स्वीकार है सबको, क्योंकि कई लोग अपना अपना इंडिविजुअल चैनल खोल करके, आपको पता है कितने होने चाहिए चैनल ब्रह्म कुमारीज का? एक, राइट? एक चैनल हो जिससे सबको पता चले कि ब्रह्म कुमारियां क्या कहते हैं। और है कितना रियलिटी में आज? 40,000, 40,000 चैनल बीकेस ने बनाए करके रखे हैं। तो आप सोचो कि भगत लोग बेचारे तो पहले से ही कंफ्यूज है, तो 40,000 चैनल होंगे, तो हमने उन्हों को प्रकाश दिया या और ही उलझन में डाला? तो तभी फिर ऐसे संदेश मुरली के साथ विश्व भर में गया है। और दादी प्रकाश मुरली की विशेषताएं की बातें, सदा निमित भाव की स्मृति से बेगमपुर की बेफिक्र बादशाह, दादी को तो देखा कैसे वो बिल्कुल बेफिक्र रहती थी। दादी जी हमेशा कहती कि बाबा का मुझे पर्सनल वरदान है, जो कभी कोई बात का मुझे फिक्र या चिंता नहीं होती, कोई व्यर्थ चिंतन भी नहीं चलता। इसका कारण है हम निमित्त हैं, फिक्रात करने वाला बैठा है, तेरी रचना है तो उसका फिक्र करो। दादी बाबा से कहती है तेरी रचना है तो उसका फिक्र करो। जब कराने वाला वह है, जवाबदार वह है, हम निमित्त है तो फिक्रात किसकी। कोई बात है प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि चिंता चित्ता के समान है, चिंता अग्नि में जलाती ही रहती है, बिल्कुल और आगे बढ़ने नहीं देती।
हम जब जब बहन जी समय निकाल करके हम सभी के बीच में आते हैं, हमें बहुत हर्ष होता है। और हम जानते हैं आदरणीय जयंती बहन जी चक्रवर्ती हैं, सब जगह दीदी सेवा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अभी क्लास थोड़ा समय से पूरा हुआ है, तो हम दीदी जी से जरूर कुछ सेवा समाचार भी सुनना चाहेंगे। बैठेंगे सभी थोड़ी देर, क्योंकि दादी जी का भी महीना चल रहा है। प्रकाशमणि दादी जी की आपने अंग संग रहकर बहुत पालना ली है, तो रोज तो मुरली में सुन ही रहे हैं, लेकिन जो अंग संग के अनुभव होते हैं उसका अपना ही प्रभाव होता है। तो
ओम शांति। पहले एक तो जो नया समाचार है वो सुनाती हूँ, फिर दादी जी की भी बातें। कल के समाचार में ही दो बातें हमने पढ़ी विदेश का, एक तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का कभी नाम सुना है? नाम है ग्रीनलैंड, परंतु है वो बर्फ का सारा। यूरोप यूके से आप अमेरिका की तरफ जाओ तो बीच में एक बहुत बड़ा देश आता है ग्रीनलैंड, परंतु टोटल देश की पॉपुलेशन है सिर्फ 56,000, और वो डेनमार्क के अंडर है, क्योंकि डेनमार्क जहां पर अपने बाबा के आश्रम है, खूब सारे सौम्य बहन है वहां, तो उन्हों के संबंध से अब वहां पर सैकड़ों सालों से वो वहां पर डेनमार्क का राज्य चलता रहता है। और आजकल जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि ग्रीनलैंड, क्योंकि अमेरिका इस तरफ, डेनमार्क इस तरफ, बीच में ग्रीनलैंड, तो कहता है कि मुझे ग्रीनलैंड को हब करना है। फिर ड्रामा में क्या होता है देखेंगे, परंतु उसके अंदर उस देश में बहुत सारे मिनरल्स है, जो आजकल के जो टेलीफोन बनते हैं आदि उसके लिए बहुत आवश्यक है, तो वो उस पर आंख उसकी बनी रही है। तो अपनी जो सोनिया बहन है और गोलू भाई है, एक बहन है वहां की ही, उसके सहयोग से फर्स्ट टाइम वहां पर सेवाएं रही है। तो मैंने तो सोचा था कि सारा ही बर्फ का देश है, तो वहां पर तो इतना कोई जाने का कोई होगा नहीं, परंतु सोनिया उस देश की नजदीक है, तो उसको कुछ समय से संकल्प था, तो भी वहां पर गए हैं, सेवाएं हुई है, जो वहां का कैपिटल है वहां पर बहुत अच्छी सेवाएं रही। और ये जो बहन जो नजदीक आई है वो खुद भी वेलनेस की बातें, न्यूट्रिशन की बातें और साथ साथ माइंडफुलनेस, विदेश में माइंडफुलनेस का माइंड को फोकस कैसे करें, वास्तव में बुद्धिज्म में ये बात ज्यादा चली है, परंतु ये बात शुरू होती है गीता से। गीता में भी किसी ने मुझे कुछ श्लोक दिखाए थे जिसमें मन को किस तरह से फोकस करना होता है, वो गीता की ही बातें हैं। तो निकला है अपने धर्म से, परंतु ले लिया है बुद्ध वालों ने, परंतु सारे विश्व में उसका बहुत फैलाव है। तो ये बहन खुद भी माइंडफुलनेस की टीचर थी, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ उसका संपर्क रहा। तो कैपिटल सिटी में उन्होंने प्रोग्राम किया और अभी उनको अपने पास डेनमार्क में बुलाने का सोच रहे हैं कि कैसे करें। परंतु ये जो बड़ा देश, मतलब बहुत छोटी पॉपुलेशन, परंतु उस देश में भी जो सारा वैसे बर्फ से भरा हुआ था, वो बर्फ पिघलती जा रही है, जिस कारण से वो जो पानी का है सागर का, वो ऊपर ऊंचा आता जा रहा और कई छोटी छोटी जो द्वीप है वो तो बिल्कुल खत्म होने जा रही है। तो ये इंटरेस्टिंग समाचार था। और वैसे तो रक्षाबंधन तो ब्राह्मणों का त्योहार विश्व भर में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता हर स्थान पर, परंतु इस बारे पार्लियामेंट में भी, यूके पार्लियामेंट में एक अपनी बहन है जो मधुबन में कई बारी आ चुकी है, बैरोनेस वर्मा, तो उसके निमंत्रण पर जैमिनी बहन और भी बहनें गई थी राखी बांधने के लिए। वहां पर कई एमपीज आदि आदि उस प्रोग्राम में आए थे। परंतु कल का समाचार ये था कि आयरलैंड में वहां की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है डबलिन की, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी राखी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें अपनी लिज बहन है जो आयरलैंड को संभालती है, वो तो हर वर्ष मधुबन में आती ही है बहुत वर्षों से, और जैमिनी बहन साथ साथ गए, तो वहां पर यूनिवर्सिटी में और वैसे ब्राह्मणों के साथ भी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। बाकी तो आप समझ सकते हैं कि सब तरफ सेवाएं तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। परंतु दादी जी की एक तो बातें मैं सुनाती हूं। दादी को सबके दिलों को जीतने का बहुत सुंदर तरीका था। क्यों? क्योंकि वो बाबा के प्यार में बहुत लवलीन रहती थी, तो और भी जो नजदीक आते थे बहुत ही समीप आ जाते थे। तो दादी जी जब फर्स्ट टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में आई 1977 में, ईस्टर्न कंट्रीज में तो 1954 में जब कॉन्फ्रेंस थी जापान की, उसमें दादी जी, दादी रतन मोहिनी जी, दादा आनंद किशोर, ये तीन गए थे उस कॉन्फ्रेंस में। और फिर उन्होंने पूरा एक वर्ष लगाया था उस तरफ सब तरफ, जापान, एशिया के और देश, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों में सेवा करते रहे पूरा एक वर्ष। और फिर तो वापस भारत आ गए, तो बाबा ने दादी जानकी को भेजा था चेन्नई में, उनकी वो शिप से आए थे, क्योंकि उनकी कुछ छपाई भी वहां पर, बाबा ने कहा था कि यदि कोई ऑफर करता है तो आप झार और चक्कर की छपाई करा करके लाओ जापान से। तो जापान से कैसे लाएंगे प्लेन में, तो वो फिर शिप में उनको लेके आए थे। तो आकर के पहुंचे थे चेन्नई, और चेन्नई में दादी जानकी को बाबा ने भेजा था तो उनका स्वागत करना और उस स्वागत के निमित्त बड़ा प्रोग्राम भी करना। तो वो तो ईस्ट की बात, परंतु वेस्टर्न कंट्रीज में 1977 में दादी आई। तो हम लोगों ने तो प्रोग्राम बनाया था जहां जहां सेंटर है, परंतु दादी जी को निमंत्रण था जर्मनी के लिए भी, सेंटर अभी तक नहीं था, परंतु जर्मनी से उस वर्ष में, पता नहीं कोई भाई यहां बैठे हो, बहने तो शायद नहीं होंगी, बहने भी शायद हो, 1977 के शुरुआत में 108 जर्मनी से टूरिस्ट आए थे। तो वो टूरिस्ट का सूर्य भाई और सुमन बहन वहां की, उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि ट्रैवलिंग करके, जर्मन लोगों को ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक होता, तो वो ट्रैवल करके भारत के कुछ कुछ स्थान दिखा करके, परंतु मेन लक्ष्य था उनको आबू में लेके आए। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि बाबा आकर मिले हमसे, तो बाबा ने तो कहा कि बच्चों के लिए संदेश लेके जाओ, तो दादी गुलजार वो संदेश लेके आई थी नयों के लिए। और क्या था कि जब वो यहाँ पर आकर के पहुंचे तो बहुत ज्यादा लोग और तो थे नहीं, तो 108 लोगों की सेवा में सब दादियां हाजिर थी, और उसमें तो खास बड़ी दादी दीदी और दादी गुलजार, बहुत सुंदर सेवाएं हुई। और वो अपने साथ एरोप्लेन में ही एक टेलीविजन टीम को लेके आए थे, क्योंकि एक वहां का चैनल था जिन्होंने कहा कि हम सारा टूर का कवरेज करेंगे, तो उस सब तरफ वो अपना कैमरा लेके घूमते ही थे। तो दादी गुलजार से जब मिले तो कैमरा वालों ने कहा कि हमको अनुभव करना है, तो कैमरा को तो छोड़ दिया, परंतु हरेक को दादी गुलजार और दादी प्रकाश मणि और दीदी से बहुत विशेष अनुभव रहा। तो वो तो बहुत ही सुंदर सेवाएं हो गई। फिर जब दादी का टूर का प्रोग्राम बन रहा था तो प्रोग्राम तो बन गया, परंतु जो दो नए देश है जहां दादी का जाना हुआ, दादी की ऐसी शक्तिशाली पर्सनालिटी जो उन देशों में भी सेवाएं शुरू हो गई। तो एक तो दादी ने कहा कि जर्मनी वाले कहते हैं कि जबकि इतने सारे लोग मधुबन आए हैं, दादी अभी आ रही है इस तरफ, तो हमारे पास जरूर आए। तो सेंटर ना भी होते दादी वहां पर पहुंच गई, और फिर तो जर्मनी का सेंटर स्थापन हो गया। फिर दूसरा देश अमेरिका, अमेरिका में कोई सेवाएं नहीं थी, कुछ शुरू ही नहीं हुआ था, परंतु एक बहन दादी को बहुत प्यार से बुलाती रही, तो दादी ने स्वीकार किया और जादू दादी को वीजा भी मिल गई। नहीं तो भारत से निकलो, पासपोर्ट इंडियन है तो यहां से वीजा लेना जरूरी होता, वहां पर पहुंच करके तो कोई नहीं ले सकता, परंतु कुछ ऐसे कनेक्शन थे ट्रिनिडाद में जो वो काम भी हो गया, और दादी का संकल्प था जाने का तो वो बात हो गई। और दादी ने वहां पर जब यूएन के सामने सारे विश्व के झंडे देखे तो दादी ने कहा कि यहाँ सबसे बड़े पे बड़ा झंडा शिव बाबा का जरूर लहराएंगे, क्योंकि सारे विश्व को एकता में लाने वाला वो शिव बाबा है। तो दादी का शुद्ध संकल्प, और फिर दो वर्षों के बाद वहां पर भी सेवाएं शुरू हो गई और सेंटर भी बन गया। परंतु फिर दादी गई वहां पर भी एक ही बहन के निमंत्रण पर, दादी टेक्सस में गई। अब सोचो कि वहां पर भी एक बहन, यहां भी एक बहन, परंतु दादी की बहुत बड़ी दर बुला रहे हैं तो हमको जाना है जरूर। दादी वहां सेंट्रल नहीं है, कोई बात नहीं, बाबा संभालेंगा। तो फिर वहां टेक्सस में भी गई, और दादी के जाने से फिर तुरंत ही डॉक्टर हंसा रावल ने आध्यात्मिक जन्म लिया। वो तो पहले संपर्क में थी, परंतु वो जो पहचान हो जाए वो थी दादी की दृष्टि से। तो दादी जी को देखते ही उसको ऐसी दृष्टि मिली जो टेक्सस में सेंटर बन गया। तो आप सोचो कि दादी बहुत तो भारत में ही रही, परंतु वर्ष में एक बारी कभी ईस्ट कभी वेस्ट दादी का चक्कर लगता रहा, परंतु उस एक आत्मा ने कितनों की ब्लेसिंग्स प्राप्त की होंगी। जो भी आज सारे अमेरिका की सेवाएं हो रही है वो भी ब्लेसिंग्स, परंतु साथ साथ और देशों में भी कैसे दादी ने सेवाएं की, बहुत बहुत सुंदर। और एक चित्र आप लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दादी उस समय स्टेज पर भाषण कर रही है। वहां जो रिलीजन्स, भारत में भी आप देखेंगे कि साधु लोग मैक्सिमम, बाकी एक या दो होंगे माताएं, वो भी आज का उन दिनों में तो माताएं आती ही नहीं थी स्टेज पर, परंतु दादी को सर्वधर्म सम्मेलन में दादी को स्टेज मिली थी, तो दादी ने वहां भी जो भाषण किया उसमें कुछ ब्राह्मण निकले, जो बाद में पता चला, उस समय तो बड़ी सभा थी हजारों की, परंतु बाद में पता चला तो उनसे पूछा कि आपको ब्रह्मा कुमारी इसकी पहचान पहले कहाँ मिली, तो कहते थे शिकागो में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो पियरो है इटली वाला, उसको पहले पहचान वहां दादी की प्राप्त हुई। तो इस तरह से विश्व सेवाएं, चाहे यहां बैठी भी दादी जिस तरह से विदेशी ब्राह्मणों को संभालती थी, उनके दिलों को जीत लिया, न सिर्फ आइसक्रीम और गुलाब जामुन खिला करके, परंतु अपनी मीठी दृष्टि, मीठी वाणी और उनके बात दीदी दादी जल्दी समझ जाती थी। जैसे एक माता थी, उसका पहले संकल्प था कि मैं अपने को फ्री करके मैं सेवा में लग जाऊं, तो दादी से बैठी, तो दादी ने जब बातचीत की तो दादी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कितनी उम्र का है, 10 साल का, अब 10 साल के बच्चे को छोड़ के तुम समर्पण हो सकेंगे, तुम सोचो, तुमको वो याद नहीं आएगा, उसका दुख तुम्हारे तक पहुंचेगा नहीं। तो वो बहन फिर सोचने लगी, तो फिर उस समय तो फिर वापस घर पे ही गई, परंतु 10 वर्ष के बाद जब बेटा और बड़ा हुआ तो फिर तो उसने अपने को आजाद करके, वहां पर तो बच्चे जिस तरह यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब शुरू करते हैं, तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट होते, परंतु वो आत्मा ने फिर बाद में बहुत बहुत सेवाएं की। तो इसी तरह से दादी की दृष्टि, दादी के मीठे बोल, दादी का ऊंचा चरित्र और फिर साथ साथ दादी जिस तरह से मिलती थी एक एक के साथ, बहुत फ्रेंडली रूप से मिलती थी। दादी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उस पदवी पर नहीं मिलती थी, परंतु एक दिल से, एक फ्रेंडशिप के नाते से। तो ये जो हमारे अष्टरतन दादियां हैं, उन्होंने किस तरह की सेवाएं की, जिस आधार पर आज भी बाबा ने जो शुरू किया यज्ञ, आज भी वो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ चलता रहा और फिर प्रफुल्लित भी होता रहा। ओम शांति।